हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। पहली कतार में बैठी आकांक्षा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी चुनौती भरी आँखें अब अविश्वास से फैली हुई थी। सिद्धार्थ अब भी खड़ा था, लेकिन इस बार उसके सामने मंच पर इतिहास सचमुच बदल चुका था। लेकिन इस बार मंच की ओर देखने की हिम्मत जैसे छिन गई थी। उर्वशी दादी के होठों से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, और झलक धीरे से अपनी सीट से उठी। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घमंड नहीं, बस एक शाही ठहराव। आज पहली बार बिना किसी के नाम का सहारा लिए वो खुद एक ऐसा नाम बन चुकी थी जिसे पूरा हॉल खड़े होकर सलाम कर रहा था। आदित्य ने झलक की ओर देखकर कहा था, ऑल द बेस्ट। तब झलक ने हल्की सी मुस्कान दी और सीधे मंच की ओर बढ़ गई। वहां जाकर अब सभी मेहमान उसे अवार्ड देना चाहते थे, लेकिन झलक ने अवार्ड लेने के बजाय माइक अपने हाथ में पकड़ लिया। इस वक्त सभी कैमरों की फ्लैशलाइट पूरी तरह से झलक पर पड़ रही थी और वो उसमें बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। तभी झलक ने भारी निगाहों से सभी लोगों के चेहरों पर नज़र डाली, क्योंकि इस वक्त कई चेहरों का रंग उड़ा हुआ था। उनके चेहरे देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त उनसे सब कुछ छिन चुका है। फिलहाल वो समाज सेविका झलक को सामने देखकर खुद को रोक नहीं पाई और ऊंची आवाज में बोली, हम एक लड़की की कोई बात नहीं सुनेंगे। इस समय इसे स्टेज से नीचे उतारा जाए, इसे अवार्ड वापस ले लिया जाएगा। ये इसके लायक नहीं है, ये बलात्कार की निशानी है, इसको समाज में रहने का कोई हक नहीं है। उसकी बातें सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। झलक ने केवल आंखों से उसकी ओर देखा, और झलक की आंखें देखते ही अचानक उस समाज सेविका के शरीर में कंपन शुरू हो गया। उसके होठ अपने आप बंद हो गए। तभी झलक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सभी का अभिवादन करते हुए कहा, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इस अवार्ड के लायक समझा। सच बताऊं, मैंने सोचा नहीं था कि इतने कम समय में मुझे ये सम्मान मिलेगा। फिलहाल आप लोग मुझे ये अवार्ड देना चाहते हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन मैं ये अवार्ड उनसे लेना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ लाकर खड़ा किया है, जिनकी वजह से मैं आज अपनी सही पहचान और नाम बना पाई हूँ। मेरे दादाजी, मैं आपकी भारी तालियों के साथ स्वागत करना चाहती हूँ अपने परिवार मल्होत्रा परिवार का। सबसे पहले मेरे दादाजी दिग्विजय मल्होत्रा। जैसे ही झलक ने ये कहा, फ्लैशलाइट सीधा एंट्री गेट पर जाकर ठहर गई। वहां से बड़े ही प्रभावशाली अंदाज में दिग्विजय जी अंदर दाखिल हुए। दिग्विजय जी जैसे ही वहां आए, आर्यन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो दिग्विजय जी से पहले रेस्टोरेंट में मिल चुका था और उसने उन्हें झलक का शुगर डैडी समझ लिया था। उसे लगा था कि झलक किसी बूढ़े आदमी के साथ रह रही है, लेकिन जैसे ही दिग्विजय जी वहां शान से खड़े हुए, उसकी बोलती पूरी तरह बंद हो गई। वो बस हैरानी से उन्हें देखता रह गया। वहीं सिद्धार्थ, उर्वशी जी, रणविजय, नैना, ईशान, आकांक्षा सभी एकदम चुपचाप सामने खड़ी झलक और उसके परिवार को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी के मुंह में जबान ही ना बची हो। वहीं नैना ओबेरॉय के हाथ अपने आप कांपने लगे थे। उसे अजीब सा डर महसूस होने लगा था। ठीक उसी वक्त दिग्विजय जी ने गहरी नजरों से सबको देखा और आकर झलक के सिर पर हाथ रखा। तभी झलक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो दोस्तों, ये है मेरे दादाजी दिग्विजय मल्होत्रा। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की शुरुआत इन्होंने की थी और आज मुझे जितना भी काबिल बनाया है मेरे दादाजी ने ही बनाया है, वरना मेरे साथ कुछ ऐसे हादसे हुए थे जिनके बाद मैंने अपनी जिंदगी जीने का विचार ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर मेरे परिवार ने मुझे संभाला। फिलहाल मैं आपको अपने पूरे परिवार से मिलवाती हूँ। अब आप लोग भारी तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेरे पिताजी मिस्टर आरव मल्होत्रा का। जैसे ही झलक के मुंह से आरव का नाम निकला, नैना की आंखें फटी की फटी रह गईं। ईशान भी पूरी तरह घबरा गया, उसका गला सूख गया था। लेकिन तब तक आरव जी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आकर मंच पर खड़े हो चुके थे। पूरे हॉल में एक अलग ही तरह की खामोशी फैल गई थी। हालांकि झलक तालियों के साथ अपने परिवार का स्वागत करने को कह रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सबको किसी ने स्तब्ध कर दिया हो। फिलहाल आरव जी आगे बढ़े, झलक को गले से लगाया, उसके माथे पर प्यार से चूमा और दादाजी के पास आकर खड़े हो गए। तभी झलक बोली, तो दोस्तों, इसी के साथ आप लोग स्वागत कीजिए मेरे पालन पोषण करने वाले माता पिता और साथ ही मेरी छोटी बहन अनामिका मल्होत्रा का। जैसे ही झलक ने ये कहा, रणविजय के कान पूरी तरह खड़े हो गए थे। दरवाजे पर स्नेहा, सौरभ, रोहन और अनामिका खड़े हुए थे। अनामिका को देखते ही रणविजय के तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अनामिका यहाँ होगी और झलक उसे अपनी बहन कहेगी। लेकिन अनामिका तुरंत दौड़कर आई और झलक को गले से लगा लिया। उसे कसकर गले लगाते हुए बोली, वी आर प्राउड ऑफ यू। उसके बाद उसने माइक लिया और कहा, हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनामिका मल्होत्रा है और मैं झलक मल्होत्रा की बड़ी बहन हूँ। ये सुनकर सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। तभी झलक ने उस समाज सेविका की ओर देखकर कहा, समाज सेविका जी, मुझे लगता है कि पूरे समाज का ठेका आपने ही उठा रखा है। कुछ महीनों पहले आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैं नाजायज हूँ और बलात्कार की निशानी हूँ, लेकिन आज मुझे जन्म देने वाले मेरे पिता आरव मल्होत्रा मेरे साथ मौजूद हैं और ये रहा मेरा डीएनए टेस्ट, आप चाहें तो अभी चेक कर सकती हैं। अब आप ही बताइए नाजायज कौन है। झलक की आवाज में गहराई थी और उसकी आंखों में सीधी चुनौती। ये सुनते ही समाज सेविका के होंठ कांपने लगे, उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ बोल भी पाती उससे पहले ही सिक्योरिटी गार्ड ने उसे वहां आकर घेर लिया। अब पूरे हॉल की निगाहें नैना ओबेरॉय पर टिक गई थीं। नैना का शरीर जैसे जवाब दे चुका था, वो न कुछ बोल पा रही थी न समझ पा रही थी। दादी उर्वशी खुराना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। सिद्धार्थ लाल आंखों से सारा दृश्य देख रहा था। आकांक्षा घबराकर अपनी माँ को देखने लगी और फिर झलक की ओर देखकर बोली, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी आरव मल्होत्रा को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। इसने मेरी माँ के साथ गलत किया है, मेरी माँ के साथ बलात्कार किया है, इसे तो जेल में होना चाहिए। मैं इसको जेल भिजवा कर रहूंगी। माँ, आप कुछ कहिए, मैं हूँ आपके साथ, आकांक्षा चीखते हुए बोली। तभी आरव जी ने गहरी नजर से नैना ओबेरॉय की ओर देखा और कहा, नैना ओबेरॉय, सारा सच तुम अपनी बेटी को बताओगी या मैं बताऊं? ये सुनते ही नैना के हाथ अपने आप जुड़ गए। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, चुप रहो, कुछ मत कहो। लेकिन आज आरव चुप रहने वाला नहीं था। उन्होंने तुरंत माइक संभाला और एक एक करके बताना शुरू किया कि किस तरह नैना ने साजिश रचकर उन्हें जेल भिजवाया, कैसे उनके जीवन के कई खूबसूरत साल सलाखों के पीछे बर्बाद हुए। उन्होंने नैना की ओर देखकर कहा, ओबेरॉय इंडस्ट्रीज, जिसे तुमने मेरी जमीन और मेरी इंडस्ट्री हड़प कर हासिल किया, उसे भी मैं तुमसे वापस ले रहा हूँ। उस वक्त तुमने अपनी जल्दबाजी में सिर्फ मेरे सिग्नेचर लिए थे और इंडस्ट्रीज अपने नाम करवाई थी, लेकिन तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उस जमीन का असली मालिक मैं नहीं बल्कि मेरे पिताजी दिग्विजय मल्होत्रा थे। ये सुनते ही नैना पूरी तरह हक्का बक्का रह गई। वहीं उसका बेटा वैभव गुस्से में अपनी माँ के पास आया और बोला, आप जैसी घटिया औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। आपने हमें बलात्कार की कहानी सुनाई और हमने उसे सच मान लिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, इतना कैसे गिर सकती हैं? ये कहकर वैभव गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। तभी आरव जी ने आगे कहा, ओबेरॉय इंडस्ट्रीज अब अस्तित्व में ही नहीं है, वो अब मेरी बेटी झलक मल्होत्रा की है और ये रहे उसके सारे कागजात। ये कहकर उन्होंने स्टेज पर सारे दस्तावेज सबके सामने दिखा दिए। कैमरों की फ्लैशलाइट लगातार चमकने लगी। मीडिया को मसाला मिल चुका था। सभी रिपोर्टर नैना ओबेरॉय को चारों तरफ से घेर कर सवाल पूछने लगे, आपने ऐसा कैसे किया, क्यों एक निर्दोष इंसान की जिंदगी बर्बाद की,
क्या ये सब आपकी साजिश थी? लेकिन नैना पूरी तरह सदमे में थी, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वहीं ईशान ओबेरॉय समझ चुका था कि उनका खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। वो सीधा स्टेज पर गया, घुटनों के बल बैठ गया और आरव की ओर देखकर बोला, आरव, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते।